ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से सातवां स्कंध अध्याय सात। प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, इस अध्याय का नाम है, और श्लोक संख्या 34। निशम्या कर्माणि गुणान् अतुल्यान् बिर्याणि लीला तनुभी कृतानि यदा अतिहर्ष उत्पुल्क अश्रु गदगदम् प्रतकण्ठ उदगायति रोति नृत्यति। निशम्य कर्माणि गुणान् अतुल्यानि बिर्याणि लीला तनुभिः कृतानि यदातिहर्षोत्पुलकासुत गदगदम् प्रतकण्ठ उद्गायति रोति नृत्यति। निशम्य कर्माणि गुणान् अतुल्यानि निशम्य कर्माणि गुणान् अतुल्यानि बिर्याणि लीला तनुभिः कृतानि यदाति हर्षो पुलकाश्रु गदगदम् प्रतकण्ठ उद्गायति रोत नृत्यति। निशम्य कर्माणि गुणान् अतुल्यानि बिर्याणि लीला तनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गदगदम् प्रतकण्ठ उद्गायति रोति नृत्यति।
Yeah.
माताजी निशम्या सुनकर कर्माणी दिव्य कलाप कार्य कलापों को गुणान आध्यात्मिक गुणों का अतुल्यान असामान्य जो सामान्य पुरुष में नहीं दिखते बिरयाणी अत्यंत शक्तिमान लीला तनु भी अनेक लीला स्वरूपों के द्वारा कृतानि किए गए यदा जब अतिहर्ष अत्यंत प्रसन्नता के कारण उत्पुल्लक रोमांच अश्रु आंखों में आंसू गदगदम अवरुद्ध कंठ प्रोतकंठ खुले स्वर से उद्गायती उच्च स्वर से कीर्तन करता है रौती रोता है नृत्यति नाचता है। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्य कलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी वह नाचता है तो कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। तात्पर्य भगवान के कार्य कलाप असामान्य होते हैं। किसी के पास फोलियो है? यहां पर फोलियो, कैन यू सी नाइन्थ कैंटो चैप्टर 19 टेक्स्ट नंबर 24 19:24। भगवान के कार्यकलाप असामान्य होते हैं। उदाहरणार्थ जब वे रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाने का असामान्य कार्य किया। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने 7 वर्ष की ही अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वे असामान्य कार्य हैं। मूर्ख तथा धूर्त लोग जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं हुए होते वे भगवान के इस असामान्य कार्यों को मिथ्या या काल्पनिक मानते हैं। किंतु जब मुक्त व्यक्ति या भक्त भगवान के इन असमान कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो वह तुरंत ही आनंद विभोर उठता है और कीर्तन करके नाचने तथा जोर जोर से प्रसन्न होकर रोने के लक्षण प्रकट करता है। भक्त तथा अभक्त के बीच यही अंतर है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्वीयै मा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूषु पुरुषम् भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलम् कृषिष्ठम् भगवन् वशांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त जन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भाव राधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे व्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसके पूर्व श्लोक में वर्णन किया गया है कि भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है और जब कोई भक्ति करने लगता है तब वह किस प्रकार से रति के स्थिति को प्राप्त करता है और जो व्यक्ति रति के स्थिति को प्राप्त कर लिया है उनके लक्षण क्या है वह श्लोक संख्या 34, 35 और 36 में किया गया है। तो हम लोग इन तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे आज। प्रथम विषय है कि भक्ति करने वालों की योग्यता क्या है, भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति का क्रमिक विकास करते हुए रति के स्टेज पर कोई कैसे पहुंच सकता है। और जब वह रति के स्टेज पर पहुंचता है तो उसकी गति क्या होती है। ठीक है, ये विषय वस्तु आज का टॉपिक यही है। तो यहां पर इसके पूर्व श्लोक में कहा गया है एवं निर्जित षड्वर्गै क्रियते भक्ति ईश्वरे वासुदेवे भगवती यता संलभते रति। कहते हैं एवं इस प्रकार से जब साधना भक्ति कोई करने लगता है तो साधना भक्ति करते करते निर्जिता सड़ वर गई के दो अर्थ होते हैं। एक तो हुआ काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, इच्छे, जो इन छह पर विजय प्राप्त कर लाता है। या सड़ वर गई का दूसरा अर्थ होता है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। छह इंद्रियां हैं, मनोस्थान इंद्रियाणी प्रकृति यान्ति कृष्टि, ये छह इंद्रियां हैं जो पांच ज्ञान इंद्रियां और मन, इनका अपना अपना विषय है। आंख का क्या विषय है? देखना तो काम है, विषय क्या है? आंख का काम है देखना, लेकिन विषय क्या है? क्या देखता है? दृश्य, रूप, रूप उसका विषय है। कान का विषय क्या है? अरे हुकारी भरो, शब्द सुनना तो उसका काम है, शब्द विषय है। जिह्वा का स्वाद, नाक का गंध लेना और त्वचा का, तो ये तो पांच ज्ञान इंद्रियों के विषय हुए। मन का विषय क्या है? काम है उसका, ये तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तीन काम करता है मन। विषय क्या है मन का? हरदास, वो भी काम है, लक्षण है उसका। विषय क्या है मन का? हैं? तू आगे क्यों नहीं आते, पीछे क्यों बैठे हो? मन का विषय क्या है? वो भी कार्य है। मन का विषय है मान, मन को मान चाहिए, सम्मान कह लो, जो भी कह लो, मान के ही बाल बच्चे सब हैं। मन को मान चाहिए, मन का विषय है मान, इसलिए महाप्रभु कहते हैं अमानिना मान देना, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। जो खत्म करो, मन का विषय है मान। तो जो व्यक्ति निर्जित निकृष्ण रूपेण जित, जो टोटली इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, निर्जित सड़ बर गई इन छह विषय वासनाओं पर, वो व्यक्ति गोस्वामी कहलाता है। उपदेशामृत में पहला ही श्लोक है, वाचो वेगम जिह्वा उदरो उपस्थम, एतान वेगान जो विषहेत धीरा, ऐसा कर लेता है वो गुरु है, वह गोस्वामी है। तो भक्ति करने के लिए, भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें इन सड़ विकारों पर, सड़ वर्गों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, यानी इनको छोड़ना पड़ेगा। कैसे इसे छोड़ना है, तो ऐसा ही एक श्लोक आया हुआ है महाराज याति के संबंध में। वे अपने पत्नी से पूरे अपने जीवन का कथा बताए, एक बकरा और बकरी का उदाहरण देकर के। तदोपरांत वो खुलासा कर दिए कि हम ही लोग हैं बकरा और बकरी। कहते हैं आसेवितम वर्ष पुगान सड़ वर्ग विषयेषु सह, हे प्रिय, हम और तुम दोनों मिलकर के आसेवित सम्यक प्रकार से इसका सेवन किया, खूब सेवा। किसको? विषय वस्तुओं को। कितना दिन सेवा किया? कहते वर्ष पुगान, ईयर आफ्टर ईयर इसका सेवा किया। लेकिन अब मैं इसे त्यागना चाहता हूं। तो माने पूछे कैसे त्यागना चाहते हैं? तो कहते हैं क्षणे नाम मुचे नीडम जात पक्ष इज। मैं ठीक वैसे ही इन विषय वस्तुओं को त्यागना चाहता हूं। कहते मुमुचे, मुचे मतलब त्याग देना, और मुमुचे मतलब एक बार त्यागने के बाद उधर कभी दृष्टि न करना। उदाहरण दिया गया है कैसे। क्षणेना मुमुचे नीडम, नीड मतलब घोंसला, घोंसले को द्विज, द्विज मतलब पक्षी, दो द्विज होते हैं, एक जो संस्कार प्राप्त करता है, जन्मना जाए तो शूद्र संस्कार द्विज भवे, ब्राह्मण द्विज कहलाता है, और पक्षी को भी द्विज कहा जाता है क्योंकि पहले उन्हें अंडा होता है, पहले अंडा होता है और जब अंडा फूटता है तब वह पक्षी होती है। राइट, दो जन्म हो गया ना, पहला जन्म हुआ अंडा का, जब अंडा फूटा तो पक्षी हुए, दो जन्म हुआ, तो इसीलिए इन लोगों को द्विज कहा जाता है। तो कहते हैं क्षणे न मुमुची नीड जात पंख इव द्विज। जैसे जब चिड़िया को पंख उड़ जाता है, जात मतलब उत्पन्न हो जाता है, जन्म लेता है, पंख मतलब पंख, जिस दिन चिड़िया को पंख उत्पन्न हो जाता है वो घोंसला छोड़ देती है। अब बताओ घोंसला छोड़ने के बाद क्या उसी घोंसला में कभी जाती है? कभी नहीं जाती है, वो अपना घोंसला बनाती है, उस घोंसला में नहीं जाती है, चाहे वो जैसा भी घोंसला हो। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पंख कम निकल गया है लेकिन इतना मजबूत नहीं हुआ है, और कभी कभी पक्षी नीचे गिर भी जाती है, गिर जाती है, और जब गिर गई तो गई काम से, पुनः ऊपर नहीं जाती है, या पंख हो गया तो उड़कर चली जाती है। तो वैसे ही जब व्यक्ति इन षड वर्गों को, इन षड विषयों को, काम क्रोध मोह मत्सर मद लोभ, इन षड वर्ग या षड विषय को त्याग देता है, क्रियते भक्ति ईश्वरे, भक्ति तभी संभव होगी। जो साधना भक्ति हो भी भक्ति है, लेकिन शुद्धा भक्ति का बात हो रहा है कि तब संभव होगी भगवान में जब इनको हम छोड़ देंगे। और कैसे छोड़ेंगे? जैसे चिड़िया अपने घोंसले को छोड़ देती है, मुड़कर फिर उधर नहीं जाएंगे। ये नहीं कि घर द्वार छोड़ करके भजन करने आ गए और फिर उधर चले जाते हैं। कितने लोग तो ब्रह्मचारी होकर सन्यासी होकर भी चले जाते हैं, तो उस परिस्थिति में भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति करने का यहां पर जो विधान बताया गया है, ये प्रहलाद महाराज एक महाजन हैं, वे बतला रहे हैं कि कैसे। तब कहते हैं वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का परिचय क्या है? ठीक ऐसा ही बात भक्ति स्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अब तुमने बताया कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन रूप गोस्वामी प्रैक्टिकल कह रहे हैं, छोड़ो मत जोड़ो, सब कुछ को जोड़ो, इंद्रियों को जोड़ो। जिह्वा है, व्यर्थ का बात करने के बजाय उसको जोड़ो भगवान का गुणानुवाद करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे समस्त इंद्रियों को भगवान में जोड़ो। भक्ति बड़ा सरल है, कोई कर सकता है, कुल जोड़ना है। और यदि श्रवण कीर्तन आदि साधन के द्वारा यदि वो जोड़ना शुरू करता है, वो जोड़ने लगता है, तो क्रमशः उन्नति होती है। ठीक ऐसा ही बात भगवान कहते हैं माता देहूति से, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाद अपवर्ग वर्त्मनी श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति अनुक्रमिष्यति, क्रमशः बढ़ता है। भक्ति में घाटा नहीं होता है, ये घाटा का सौदा नहीं है। और सब व्यापार घाटा वाला हो सकता है, लेकिन इसमें घाटा होने का थोड़ा भी चांस नहीं है यदि कोई भक्ति करता है। तब यदि भक्ति भी करे और माया भी, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि कोई भक्ति करता है, सब कुछ त्याग करके यदि कोई भक्ति करता है, तो घाटा नहीं होगा, उसे नफा ही होगा। एक मुझे कथानक याद आ रहा है कि नारद जी कलयुग के जीवों के विषय में सोच रहे थे, कैसे इन लोगों का उद्धार होगा। चंतर मंगल में बेसाएं कुछ कथा है, कैसे इन लोगों का उद्धार हुआ कलयुग के जीवों का। तो बड़े चिंतन में मग्न थे और उत्तर नहीं मिल पा रहा था, बड़े डिस्टर्ब जैसे हो गए थे। तो भगवान देखे कि हमारा भक्त डिस्टर्ब हो गया। जय श्री श्री गाय गौर सुंदर गौरिदाय की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो भगवान चिंतित हो गए, जब नारद जी डिस्टर्ब हो जाएंगे तो प्रचार कौन करेगा। तो भगवान नारद जी के पास आए और कहे, नारद जी क्या बात है, बड़ा टेंशन में आप लग रहे हो, क्या टेंशन है आपका। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं सोच रहा हूं कि कलयुग में इतने अधम लोग हो जाएंगे, उन लोगों का उद्धार कैसे होगा कलयुग में। तो भगवान ने कहा, बड़ा सरल तरीका है कलयुग में उद्धार का। वह उद्धार का तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नारद ने कहा, बस इतना ही करना है। कहा बिल्कुल, आप जाओ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो, जिसको भी आप देखो उसको ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, उसका उद्धार हो जाएगा। तो नारद जा रहे थे तो एक सांप दिखाई पड़ गया। जब सांप दिखाई पड़ा तो सांप को नारद जी बोलने लगे, क्योंकि तो जीव देख रहे थे ना, देह नहीं देख रहे थे। तो बोले, बोलो जीव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना नारद जी बोले कि सांप मर गया। नारद जी को टेंशन हो गया, ये कैसा उद्धार है। कहे कोई बात नहीं, थोड़ा आगे गए। तो आगे नारद जी गए तो एक कुत्ता आ रहा था। तो नारद से, इसका भी मैं उद्धार करता हूं, इस जीव का भी। तो उसके पास भी जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू कर दिए। वो कुत्ता भी मर गया, उद्धार हो रहा था इन लोगों का। जब कुत्ता मर गया तो नारद जी कहे, कैसा मंत्र है, सब मरिए जा रहे हैं। फिर नारद जी थोड़ा आगे गए तो एक गाय आ रही थी। तो बड़े चाव के साथ नारद जी गए और उस गाय को ही बोले, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
वो गाय भी मर गई।
नाराज बड़े टेंशन पड़ गए, ये तो गोहत्या का पाप लग गया, ये भगवान ने कौन सा मंत्र दे दिया, ये मंत्र तो ठीक नहीं है, बड़ा गड़बड़ लगता है। नाराज जी सोचे कि मंत्र कुछ गड़बड़ है, अब इस मंत्र का प्रचार नहीं करूंगा। तब तक से एक राजा का लड़का आ रहा था, धनवान लड़का था, आ रहा था उधर से। जब वो नारद जी को देखा तो बड़ा खुश हुआ, लगा नाचने नाचते हुए आ रहा था, नाचते हुए छोटा बालक था, नाचते हुए आ रहा था। नारद जी इसको बड़ा खुश देखे, कहे कि इसको मैं मंत्र नहीं दूंगा। बेचारा बच्चा कितना खुश है, कहीं इसका प्रभाव इस पर पड़ जाएगा, यही मर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी डिसाइड किए कि मैं इसको मंत्र नहीं दूंगा। तो भगवान वहां टपक पड़े, कहे क्या नारद जी क्या सोच रहे हो, दो इसको ही मंत्र दो। कहा नहीं प्रभु, बड़ा घटा का सौदा है, ये मैं नहीं करूंगा बिजनेस है। तीन लोग मर गए, ये राजा का बेटा है, मर जाएगा तो प्रचार बंद हो जाएगा, पूरा उल्टा प्रचार हो जाएगा सब, ये नहीं करूंगा, कुछ दूसरा कोई दूसरा ज्ञान दूंगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक बार अपना लो, एक बार करो। तो नारद जी तो भक्त हैं, उनको विश्वास है भगवान के वाणी में। तो नारद जी उसको बोले, बोलो हे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम। वो बच्चा जोर से नाचने लगा, गाने लगा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम। नारद जी देख रहे हैं ये नहीं मरा, ये तो नाच गा रहा है, नारद जी बड़े खुश रहे थे। बाद में वो लड़का सीधे सस्तांग दंडवत प्रणाम किया नारद जी को, कहा है धन्य गुरुदेव, आपकी बहुत अहेतुक कृपा है। तो नारद जी ने कहा कि मैंने तो मारे पास क्या किया, कहा भूल गए, अरे सबसे पहले मैं सांप के जोनी में था, तो आपने हरे कृष्ण बुलवाया यही मंत्र दिया था, तो उसके बाद मुझे कुत्ता का जोनी मिला, फिर आपने यही मंत्र दिया उसके बाद गाय का जन्म मिला, फिर आपने यही मंत्र दिया उसके बाद आज मैं राजा का बेटा बना हूं। ये महामंत्र का प्रभाव, ये मंत्र का प्रभाव। तो कोई यदि साधन भक्ति करते हुए ये मंत्र का प्रभाव जानना चाहता है, भक्ति करता है, तो उसकी उन्नति ही होती है, अधोन्नति अधोगति नहीं होती है। वासुदेवी भगवती यता संलभ्यते रति, वह रति को प्राप्त करता है, जब भक्ति शुरू कर देता है तो रति को प्राप्त करता है। अब रति की प्राप्ति तक उसे सात छह गेट पार करने पड़ते हैं, रति सातवां गेट है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचितः यथा शक्ति ततो भाव ततो प्रेमान उदन्यति साधकानां अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे क्रमे क्रमे। तो ये स्टेप है, सातवां स्टेप जो है वो कहलाता है रति या आसक्ति। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरतामृत में मध्य लीला में सनातन गोस्वामी को भक्ति के एक क्रमिक विकास का वर्णन किए हैं कि रति की प्राप्ति कैसे होती है। यहां पर तो प्रहलाद जी संक्षिप्त में कह दिए हैं कि वासुदेवे भगवती यथा संलभते रति, जो भगवान वासुदेव का भजन करने लगता है तब उसे रति की प्राप्ति होती है, वह भगवान में आसक्त हो जाता है और यही भक्ति कहलाती है। नाद पंचरात में वर्ण आया हुआ है अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगीता, अनन्य ममता विष्णु, विष्णु में अनन्य भाव की ममता हो, सभी ममताओं को छोड़कर का षड विगर्हों को छोड़कर के षड वर्गों को त्याग करके 100% ममता यदि विष्णु में हो जाए, अनन्य ममता विष्णु, वो ममता कैसी होनी चाहिए? ममता प्रेम संगीता। वो ममता किसी कामना के लिए नहीं होनी चाहिए, वो निष्काम ममता होनी चाहिए। भक्तिर इति उच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारदो। इस बात को भीष्मदेव कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं, उद्धव कहते हैं और नारद कहते हैं कि अनन्य भाव से भगवान विष्णु में निष्पक्ष बिना अपेक्षा का ममता उत्पन्न करना ही भक्ति कहलाती है। वहां ममता है, यहां पर रति है। अब प्रश्न उठता है कि रति ममता आसक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, तो इसका वर्णन भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से करते हैं। कौन भागे कौन जीवे श्रद्धा यदि हो तबे से जीव साधु संग जे करय। कहते हैं कोई भाग्यवान व्यक्ति, भाग्यवान वही है जिसे साधुओं का दर्शन हो जाए, जिसे साधुओं की संगति प्राप्त हो जाए। श्रद्धा हम लोगों के दिल में इनबिल्ड है, श्रद्धा बाहर से नहीं आता है, श्रद्धा है। श्रद्धा है तभी कोई काम करता है, कुछ भी काम करना होता है श्रद्धा चाहिए। लेकिन साधुओं की संगति से वह श्रद्धा जो है वो राइट डायरेक्शन में लगती है। बस तो वही कहते कौन भाग्य यदि कौन भाग्यन कौन जीवेन। यदि कोई जीवात्मा यदि उसका सौभाग्य उदित हो, श्रद्धा का सौभाग्य उदित हो, तब वह साधु का संगति करता है। और जो साधु की संगति होती है, साधु संग होते हैं श्रवण कीर्तन साधन भक्ति है सर्वानर्थ निवर्तन। जब वह साधु का संगति करने लगता है, जैसा रहेगा संग, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। यदि साधुओं का संगति हम करेंगे तब श्रवण कीर्तन अवश्य होगा, क्योंकि साधुओं का एकमात्र वही काम है मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं जो मेरे हो गए हैं, यानी जो साधु हैं, वे लोग नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। जैसे ब्रज के षड गोस्वामी गण अष्ट प्रहर कृष्ण भजम चारि दंड शयने नाम संकीर्तन नाही कोनो दिने। अष्ट प्रहर निरंतर कृष्णा, वैसे ही भगवान गीता में अनंत कहते हैं सत्तम कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढ़व्रता। साधुओं का यही लक्षण है, जो प्रजल्प नहीं करता है, केवल नित्य निरंतर श्रवण और कीर्तन में लगा रहता है। भगवान का नाम लेना और भगवान का कथा सुनना। तो वैसे महापुरुषों का यदि सौभाग्यवश किसी जीव का संगति हो जाए तो श्रवण कीर्तन अवश्य होगा। और ये साधन भक्ति जो श्रवण कीर्तन की भक्ति है, ये साधन भक्ति कहलाती है, तो इसको करने से क्या होता है, अनर्थ की निवृत्ति होती है। आदो सुधा तथो साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। पहला काम साधु संग, दूसरा काम भजन क्रिया और तीसरा काम अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया का ये फल है अनर्थ की निवृत्ति। यदि अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही है इसका मतलब कि हमारा भजन क्रिया ठीक नहीं चल रहा है। भागवतम के प्रथम स्कंध में सिद्ध गोस्वामी कहते हैं, श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्याश्रवण कीर्तनम हृदयंतस्ता ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम विधुनोति, धो डालता है, शुद्ध कर डालता है। किसको? हृदय को। इस श्रवण कीर्तन, जब श्रवण कीर्तन होगा तो अनर्थ की निवृत्ति अवश्य होगी। और प्रश्न उठता है कि अनर्थ क्या कहलाता है, किस पक्षी का नाम है अनर्थ? हम सब में अनर्थ है, हम लोग अनर्थों से भरे पड़े हुए हैं। पहला तो अनर्थ है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब अनर्थ है, ये सब उपशाखाएं हैं। सबको प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सब लोग इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। बकवास करना भी अनर्थ है, वो भी एक इंद्रियों को तृप्त करना है। जीवा से ट्र 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 तीन में टटारते रहना, वो भी अनर्थ है। व्यर्थ का बात सुनना, सिनेमा का गाना सुनना, इधर का बात सुनना, उसका बात सुनना, प्रज्वल करना और प्रज्वल सुनना, ये अनर्थ है। जो अभी भी प्रज्वल कर रहा है, सुन रहा है, इसका मतलब कि उसमें अनर्थ है, ये शास्त्र कहता है। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इनसे रिफ्रेम हो, इससे बचे, और वो भजन क्रिया से, आर्टिफिशियली नहीं। तो अनर्थ की निवृत्ति होगी भजन क्रिया करने से। और जब दिल साफ हो जाएगा, अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी, अनर्थ निवृत्ति हैले भक्ते निष्ठा हो, जब अनर्थ में अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी तो भगवान और भगवान के भक्तों में निष्ठा उत्पन्न होगा। निष्ठा का मतलब होता है सेवा करने की भावना, सेवा करने की भावना। हम ललायित रहेंगे कि हमें सेवा मिले और सेवा मिले और सेवा मिले। सेवा अधिकार दिया कर निज दासी, ये निष्ठावान भक्त का परिचय है जो सेवा मांगता है। पहले था, मैं देखा था, हम लोग देखे थे 70s में 80s में, किसी भक्त के पास कोई सेवा नहीं था तो धीरे भक्त है, प्रभु जी मेरे लिए कुछ सेवा है, मैं कुछ कर सकता हूं, कपड़ा धो सकता हूं, आश्रम सफाई कर सकता हूं, आपके लिए क्या कर सकता हूं। आजकल यदि सेवा खत्म हो गई है, बुक डिसीजन खत्म हुआ, तो आकर के आराम करते हैं। और कोई कह भी देता है, प्रभु जी थोड़ा ये सेवा कीजिए, अभी तो हम गए थे बाहर बुक डिसीजन करके आए हैं, अभी तो हम प्रचार करने गए थे, लाइफ में बनाने थक गए हैं। तो ये निष्ठा का परिचय नहीं है। निष्ठा का परिचय है कि ललायित रहना सेवा करने के लिए, ललायित रहना। जो ललायित रहता है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई परिस्थितियां हो, शरीर थक गया हो, फिर भगवान की सेवा करने की लालसा बनी रहती है, तो वह निष्ठावान भक्त है। निष्ठा होते श्रवणादि रुचि उपजय, जब निष्ठा हो जाती है सेवा करने की, तो श्रवण कीर्तन आदि नवधा जो भक्ति है उसमें रुचि उत्पन्न होता है। तो अब जहां भी हरिकथा होती होगी हम भाग करके आएंगे, और मंगला आरती का समय हुआ तो हम आश्रम से दौड़ करके आएंगे, ना कि कछुआ अच्छा धीरे धीरे चलते रहेंगे, भगवान हमारा प्रतीक्षा करें हम आ रहे हैं। हम दौड़ करके आकर पहले खड़ा हो जाएंगे भगवान के आने से, यदि निष्ठा होगी तब। भागवतम क्लास में हम भाग करके अगर पहले आगे सीट ले लेंगे बैठने के लिए, यदि निष्ठा होगी तब। यदि निष्ठा होगी तो खाने से पहले 16 माला जप जरूर कर लेंगे, ये सब निष्ठा के परिचय है। तो निष्ठा है ते श्रवण आदि रुचि उपजाय। रुचि हैते भक्ते होय आसक्ति प्रचुर। जब रुचि हो जाता है तो भक्त में आसक्ति या रति प्रचुर मात्रा में रति उत्पन्न होता है, जिसका वर्णन श्लोक संख्या 33 में किया गया है। वासुदेवे भगवती यथा संलभते रति। जब तक से रुचि उत्पन्न नहीं होगा तब तक से आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति मतलब ललायित होना, उसे प्राप्त करने का। जब भूख लगता है तब भोजन का मूल्य पता चलता है। जब भूख न लगाओ तो 56 भोगो तो भी नहीं, और खूब भूख लगा हो तो हम छीन कर भी खा लेंगे। भूख लगना जरूरी है, तो रुचि होना जरूरी है, तब आसक्ति होगा। आसक्ति होते चिते जन्मे कृष्ण प्रीति अंकुर। इस प्रकार से ये छठा हुआ रति और सातवां हुआ प्रीति, भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न होता है हृदय में, और वही प्रीति भाव कहलाता है। और वही भाव जब प्रगाढ़ होता है तो वह प्रेम कहलाता है। तो श्लोक संख्या 33 में रति शब्द का वर्णन किया गया है। यथा संलभते रति, वह रति को प्राप्त कर लेता है। जो भक्त रति के स्टेज में आ गया है उसका लक्षण आज के श्लोक में वर्णित किया गया है। जिसमें रति है इसका मतलब उसके पहले का रुचि निष्ठा अनर्थ निवृत्ति इत्यादि सब ऑटोमेटिकली है। जो भगवान इससे आसक्त हो गया है, भगवान का कथा कीर्तन सुनने के लिए आसक्त हो जाता है, तो कहते निसम्य, जब ही वो सुनता है यदि थोड़ा भी सुनता है हरे कृष्णा या केवल हरे की इतना भी सुनता है, निसम्य का अर्थ होता है सुनना समझना और जानना, सब कुछ को निसम कहते हैं। जब ही कोई हरे कृष्ण सुनता है तो समझ गया कि है क्या, और जान गया कि कृष्ण हमारे सामने हैं, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो निसम्य जब ही सुनता है क्या कहते हैं, यदा कर्माणि, जब वो सुनता है भगवान का, क्या सुनता है कर्माणि, भगवान के विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, लीलाएं हैं, जैसे नवनीत चौर्यादिनी, भगवान माखन चोरी किए थे, तो जिसमें रति है वह यदि भगवान के माखन चोरी का लीला करता हो, भगवान गाय का बछड़ा खोल देते हैं वह सुनता हो, या भगवान गोचारण कर के आ रहे हैं और उनका सौंदर्य कैसा है, बरहा पीडम नटोर पो कर्णयो कर्णिकारम, यह सुनता है, यदि वह सुनता है भगवान के इन ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज को, तब उस व्यक्ति में क्या भाव प्रकट होता है। भगवान के जो कर्म है वो दिव्य है, जैसे एक भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। निसम्य कर्माणि गुणान, यानी भक्त वात्सल्यादिनाम गुणान। भगवान के भक्त वत्सलता का गुण सुनता है। सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, लेकिन जब भगवान के वात्सल्यता का गुणानुवाद सुने, अहो बकीयम सनकाल हूट, जब यह सुने कि कैसे वह राक्षसी पुतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके द्वेष भावना से कृष्ण को मारने के लिए गई थी, तो भगवान कितने दयालु हैं कि वे उस पुतना को भी यशोदा मैया का, यशोदा मैया जैसा पद, धाय मां का पद दे दिए। तो कहते हैं कम वा दयालु शरणम ब्रजे मां, उन भगवान से और दयालु कौन हो सकता है, किनके शरण में जाया जाए। तो गुणा, भगवान के जितने भी दिव्य गुण हैं, और मुस्लिम भक्त व सलता का जो गुण है वह एक विशेष गुण है। सुखदेव गोस्वामी को भक्त बना दिया ये भक्त व सलता का गुण, और भगवान के सौंदर्य को जब सुखदेव गोस्वामी सुने, बरहा पीडम नौर बपू, दो ही चीज को सुन करके सुखदेव गोस्वामी भक्त बन गए। तो निशम्य कर्माणी गुणान अतुल्यान, भगवान के जो ये दिव्य गुण हैं वो अतुलनीय हैं, इतरेषु अविद्यमान, जो इस संसार में विद्यमान नहीं है, यहां पर नहीं है, इस संसार से परे का गुण है। चाहे कोई भी गुण हो, चाहे निर्गुण ही क्यों न हो, बहुत लोग बात करते हैं भगवान निर्गुण है, वह निर्गुण भी दिव्य गुण है। जो ये मूर्ख लोग समझते हैं निर्गुणता का अर्थ, वह नहीं है। निर्गुण का अर्थ है अतुलनीय गुण, यानी ट्रांसजेंडल क्वालिटी। भगवान के गुण जो हैं वो भी दिव्य हैं। इतरेषु, इस संसार में, इसी संसार में नहीं, स्वर्ग आदि लोकों में, चौदह भुवन में अविद्यमान, जो विद्यमान नहीं है वह कहलाता है अतुलनीय, अतुल्यान, उनकी तुलना किसी से। यहां पर तो हम कभी कभी तुलना करते हैं, जैसे राजा रानी के चलने का तुलना करते हैं हाथी के चलने, गजगामनी है, राजा रानी हाथी के समान चलने, मतवाली मत तम झूम झूम करके चलती है, तो तुलना करते हैं ताकि हम लोग समझ सके, लेकिन वो तुलना सही तुलना नहीं है, तुलना हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है अतुल्यान, जिसका तुलना किया ही नहीं जा सके, भगवान के गुणों का, भगवान के कर्मों का। बिरयाणी, भगवान के वीर्यों का, बिरयाणी, भगवान के अनेक वीर्य हैं, जैसे प्रमुख कुछ प्रभुपाद जी तात्पर्य बताए हैं, जैसे सेतु बंध सामान्य नहीं है, रावण बध, रावण बद्ध गोवर्धनो धरणादिनी, रावण बद्ध गोवर्धन उद्धार धरण इत्यादि, ये भगवान के वीर्य या शक्ति का प्रदर्शन कराता है। लीला तनु भी, भगवान लीला करने के लिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर दिए। दशम स्कंध में वर्णन आता है कि जब वे सुन रहे थे कि भगवान कैसे अर्धरात्रि में बांसुरी बजाए, सब गोपियां जो 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 सेवा करते सब छोड़ छाड़ करके और आ गई अर्धरात्रि में भगवान का संग करने के लिए, तो सुखदेव गोस्वामी प्रश्न से प्रश्न करते हैं कि भगवान तो धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं,
लेकिन एक कौन सा धर्म है कि दूसरे के पत्नी दूसरे की बेटी बहुओं को रात में बुलाना अकेले में? ये सामान्य लोग इसको गलत समझ पाएंगे, ये तो धर्म नहीं है, कृपा करके समझाइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुग्रहाय भूतानाम, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, या अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार का रूप धारण करते हैं। तो लीला तनु भी, भगवान ये शरीर धारण करते हैं, मानुषिम तनु आश्रितम, लगता है कि मनुष्य के शरीर को धारण भगवान किए। यथा राम कृष्ण ये मनुष्य दें, वामन इत्यादि ये मनुष्य दें, कहते स्वेच्छया अपने स्वेच्छा से, कोई फोर्स, हम लोग अपने स्वेच्छा से दें, धारण नहीं किए हैं। यदि हम लोगों को स्वेच्छा होती तो हम सब लोग क्या बनना चाहते, मुकेश अंबानी का बेटा बनना चाहते हैं, सबसे धनी व्यक्ति। हमारी स्वेच्छा नहीं है, भगवान स्वेच्छा से शरीर ग्रहण करते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, सृजामि हम, मैं उतरता हूं, मैं आता हूं। वे स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं, जो जो लीला करना होगा जैसे वह स्वेच्छा से धारण करेंगे। जैसे हिरणाक्ष पृथ्वी का चोरी किया था, वो समुद्र के गर्त में डाल दिया था, तो उसको निकालने के लिए भगवान ने पराकर धारण कर दिया। नरसिंह, भगवान नरसिंह का रूप धारण किए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, क्योंकि ब्रह्मादि लोगों का बात और प्रहलाद के बात को सत्य करना था। भगवान चतुर्भुज रूप में आए, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में आए, चतुर्भुज रूप में, लेकिन उन्हें लीला करना था इसलिए चतुर्भुज रूप को त्याग दिए। लीला परस, कभी कभी तो जैसे कृष्ण चतुर्भुज रूप में आए और जब माता देवकी ने प्रार्थना किया उपसंहर इति रूप, हे प्रभु आप इस रूप को छोड़ दीजिए, तो तुरंत भगवान छोटे बालक का रूप धारण कर लिए। वैसे ही माता कौशल्या जब बोली तजहु तात यह रूपा, हे पुत्र इस रूप को, हे तात आप इस रूप को त्याग दीजिए, भगवान तुरंत छोटा रूप धारण किए। वैसे ही कश्यप और अदिति के सामने भगवान आए चतुर्भुज रूप में, लेकिन वहां पर काम करना था कि इंद्र के यहां से इंद्र का जो राज्य बलि महाराज ले चुके थे वह देना। तो आज के दिन बलि बड़े शक्तिशाली थे, उनको कोई नहीं परास्त कर सकता था, क्योंकि उन पर शुक्राचार्य का कृपा था। जिन पर ब्राह्मणों का कृपा होने कोई परास्त नहीं कर सकता है। तो भगवान छोटा ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए, क्यों? लोहा लोहा को काटता है, तो ब्राह्मण के शक्ति काटने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है। तो भगवान लीला करने के लिए विभिन्न प्रकार का रूप धारण करते हैं। बिरयाणी लीला तनुभि कृतानी, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का शरीर धारण करते हैं। और भगवान के इस इन इन शरीरों में भगवान ने जो जो भी कर्म किया है, जो जो भी लीला किया है, जो भी यश की प्राप्ति किया है, यदि उसको वे भक्त लोग यदि यदा कर्माणि अतुल्यान गुणान लीला तनुभि कृतानि बिरयाणि इतरै कर्तुम इतरै निशम्य अति हर्षो पुलकः अश्रु गदगद प्रक्तकंठम उद्गायति नर्तति रोचति। तो जो रति के प्लेटफार्म पर आ गया है, जो आसक्ति के प्लेटफार्म पर आ गया है, यदि भगवान के लीला कथाओं को सुनता है, भगवान के विषय में सुनता है, भगवान का नाम सुनता है, तो उसके ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और वो लक्षण यहां पर वर्णन किया गया है, अति हर्षो, वो बहुत हर्षित होता है, हंसता रहता है पागल के समान। जैसे भगवान चेतन महाप्रभु हंसते रहते थे, अति हर्षो, अत्यंत प्रसन्न थे, उत्पुल कह रोमांच कंबा सुतरंग भांजो, सब कुछ रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस व्यक्ति को। अश्रु, आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है, गदगदम, और ऐसा अश्रु धारा बहता है कि कुछ बोल नहीं पाता है, वाणी गदगद हो जाता है। प्रोत प्रोत कंठ, गदगद होने के बाद भी हम लोग जब गदगद हो जाते हैं तो वाणी निकलता नहीं है, लेकिन ऐसे भक्त का कहते प्रोत कंठ, क्लियर कंठ रहता है। और भगवान का नाम लेना होगा तो रोएगा भी और नाम भी लेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? हम लोग रोते हुए प्रवचन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जब रति के प्लेटफार्म पर आएंगे तब आंख से सुधारा बह रही है, लेकिन फिर भी धारा प्रवाह भगवान का गुणानुवाद हो रहा है। हम लोग का जो कंठ है वो चौक हो जाता है, हम बोल नहीं पाते हैं। आप लोग ट्राई करना कभी कभी रो रहे हो और बोलने का प्रयास करना, पानी पी पी कर बोलोगे तो अभी नहीं क्लियर हो पाएगा। लेकिन यहां पर प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रोत कंठ, उसका कंठ बिल्कुल स्पष्ट रहता है, उसका वाणी। उद्गायति, और जोर जोर से रोता भी है गाता है। उद्गायते नर्तते च मद भक्त युक्त भुवना पुनाति, उद्धव गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा भक्त हो जाता है, उद्गायते उच्च स्वर से गाता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, और नर्तते च, और खूब नाचता है पागल के समान। उद्गायते नर्तते च, रोता भी है नाचता भी है, लोग कहते हैं पागल हो गया है। चेतन महाप्रभु लोग कहते थे पागल है, ये भावुक है, क्या क्या नहीं कहते थे। तो ये सब लक्षण हैं उन भक्तों का जिनको भगवान में आसक्ति उत्पन्न हो गई है, जिनको भगवान में रति उत्पन्न हो गई है। जैसे ब्रज के षट गोस्वामी गण रोते थे, गाते थे, पुकारते थे, हे राधे ब्रज देव के चललिते, हे नंद सुना कुतः, जाते थे और पुकारते थे कि हे राधा रानी आप कहां हो, हे कृष्ण आप कहां हो, खोजते थे, रोते थे, गाते थे। ये लक्षण है उन भक्तों का जो रति आसक्ति के प्लेटफॉर्म पर हैं। वैसे ही अन्य लक्षण जो आगे हैं वो तीन और श्लोकों में, दो श्लोकों में और वर्णन किया गया है। प्रभुपाद तात्पर्य में एक बात कहते हैं कि मूर्ख तथा धूर्त लोग जो दिव्य प्रब्ध को प्राप्त नहीं हुए होते, वे भगवान के इस असामान्य कार्यों को मिथ कहते हैं, कहते हैं माइथोलॉजी है। इन मूर्खों को टेस्टी नहीं है, अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे होते हैं, यही कहते हैं। इन्हें रति के प्लेटफार्म पर नहीं पहुंचे, अब तो देह के प्लेटफार्म पर हैं। सुअर और कुत्ते के समान देह के भरण पोषण में लगे हुए, हार निद्रा भय मैथुनम च, और लेक्चर बड़ा बड़ा देते हैं, कहते हैं ये तो सेंटिमेंट है, ये तो माइथोलॉजी है। ऐसा लगता है कि ये कृष्ण भक्ति पर पीएचडी कर करके तब बोल रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं है, मूर्ख नंबर एक है। प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख और धूर्त, वो मूर्ख है क्योंकि जानता नहीं है, और वो धूर्त है जो बताता है कि माइथोलॉजी है, इसलिए वो धूर्त है, चीटिंग कर रहा है लोगों को। और संसार में ऐसे लोग हैं जो धोखा खाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ विथ चीटर एंड चीटेड, इस संसार में धोखा खाने वाले और धोखा देने वालों की कमी नहीं है। तो भक्त और अभक्त में यही अंतर है। जब भक्त सुनता है भगवान का गुणानुवाद तो उसके दिल में क्या होता है, और जब अभक्त सुनता है तो कहता है तो मैथोलॉजी है। तो ये जरूरी है कि हम लोग बाहर निकलें और प्रचार करें, हम लोग इसको टेस्ट भी करें और दूसरों को टेस्ट कराएं। यही भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जा करके लोगों को कृष्ण का उपदेश दें। नारद जी उपदेश दिए तब वह सांप से कुत्ता बना, कुत्ता से गाय बना, गाय से मनुष्य बन गया, और मनुष्य ही नहीं बना वो भक्त बन गया। हम सब लोग वही हैं, हम भी, हमारा भी जीवन वैसे ही था, सांप का कुत्ते का। सांप मतलब द्वेष वाला है, क्रोध वाला, जिसमें सांप को क्रोध वसात कहा जाता है। एटलीस्ट मैं अपने कह सकता हूं, मुझे पहले बहुत क्रोध था, भक्त बन गया तो अभी क्रोध था, राधा कृष्ण से पूछ बताएगा बहुत क्रोध था। तो सांप से कुत्ते बन गए, भोजन ढूंढते ढूंढते कहां आया, हार निद्रा भाई मैं तो नमता कुत्ता गिरी हमारे लिए, तुम्हारे बो बो चलो तो बाहर जाओ ये हमारा है। कुत्ता से गाय बन गए, हमको मिल रहा है ना, देखा जाएगा जो होगा बाद में देखा जाएगा। और गाय से राजकुमार बन गए, और वो राजकुमार क्या हुआ, प्रभुपाद जी का अनुगत्य बन गए। तो जो प्रभुपाद जी के शरण में आ गया वो राजकुमार हो गया है। तो हम सब लोग राजकुमार हैं, प्रभुपाद जी कृपा से हम सब लोग राजकुमार हैं। वो सार्वभौम प्रभु बताते हैं ना कि 9 बजे तक गरम गरम प्रसाद मिलता है, मालूम भी नहीं है कि आटा का दाम क्या है, आलू का दाम क्या है, और टमाटर का दाम क्या है, बना बनाया मिलता है। तो राजकुमार नहीं तो और क्या है, राजकुमार है ना, कोई टेंशन नहीं है। तब तो भक्ति करो, तब तो नारद जी की आज्ञा पालन करो, तब तो भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और इस प्रकार से आसक्ति को प्राप्त करें, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, यही है इस्कान का लक्ष्य, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, प्रेमापमर्थो महान। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, माइक आप लोग बैठो, कहां जा रहे हो, प्रसाद है बना बनाया हुआ है, माइक दो। वो ब्रह्मचारी लोग क्यों खड़ा हो गए, बैठो, अद्भुत बैठो, अवधुत कुर्सी पर बैठा तो अभी तुम्हें तकलीफ हो गया। हाँ जी, किसका प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जो निस्सम्य अर्थ बोलेगी, और दूसरा बात रिपीट,
निसम्य मतलब सुन करके,
हाँ। ना अर्थ बताया ना, दो चार पॉइंट बताया ना, अर्थ बताया, उदाहरण बताया ना, दो चार पॉइंट बताया ना,
सुनना समझना और जानना, ये तीनों निसम्य कहलाता है। केवल सुनना ही होता तो सुन होता, लेकिन निसम्य में ये तीनों आ जाता है। ये 100 रुपये का नोट है ना, उसमें 10 रुपया भी है, 50 रुपया भी है, 100 रुपया सब उसमें है। निसम्य मतलब जो भी जरूरी है भक्त बनने के लिए, वो जो भी जरूरी है रोमांच कंब प्राप्त कराने के लिए, वो निसम्य कहलाता है। निसम्य शब्द कई बार भागवतम में आया हुआ है, जब विदुर जी मैत्रेय मुनि से कथा सुन रहे तो वहां भी निसम्य आया हुआ, कई बार निसम्य आया हुआ। और कोई प्रश्न, उधर पीछे पीछे माइक दो।
हरे कृष्ण जी, प्रभु जी आप बताए कि भक्तों में जो द्रवित हो जाते हैं, थोड़ा क्षण के लिए रोने लगते हैं, और रोने के बाद भी एकदम भगवान की भक्ति करते रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, ऐसा भाव पूजा के समय पर या भक्ति के समय पर होता है और भाव क्षण भर के बाद में फिर से खत्म हो जाता है, उसको कायम रहने के लिए क्या करना चाहिए?
क्षण भर भी हुआ तो अच्छा हुआ, ये कहलाता है इमोशन। इमोशन डिवोशन का परछाई होता है। इमोशन जो होता है वो डिवोशन का परछाई होता है। मैं डिवोशन का बात कह रहा था, आप इमोशन का बात कह रहे हैं, अंतर इतना ही है। आप परछाई का बात कह रहे हैं और मैं सत्य का बात कह रहा था। तो इमोशनल स्टेज में जब नया भक्त रहते हैं ना, तो संसार बिल्कुल खराब लगता है, बस यही है, चलो नाचो गाओ एकदम खूब खूब नाचेंगे और धीरे धीरे हवा निकलने लगता है। जब डिवोशन होता है तो प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है ना? तो ठीक है, इमोशन खराब नहीं है, होना चाहिए। कम से कम सपना में भी रसगुल्ला खा रहे हो तो खा तो रहे हो ना, आनंद तो आ रहा है ना, वो क्षण भंगुर है, कुछ ही समय रहेगा। तो ये जो भाव आता है वो सपने वाला भाव है, इमोशन कहलाता है, ठीक है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया कि
क्या प्रश्न है आपका?
नारद जी को भगवान विष्णु जी ने आदेश दिया कि आप महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करिए। तो हरे कृष्ण जो महामंत्र है वो चैतन्य महाप्रभु के समय से शुरू हुआ और आज तक हम लोग जप करते हैं, तो क्या ये कलियुग के पहले भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप होता था?
ये आप बाल का खाल क्यों निकाल रहे हो? अरे कहा कि भगवान का नाम लो, अरे हरे कृष्ण चाहे नमो भगवते वासुदेव, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम दो, क्योंकि कलयुग में नाम ही एकमात्र है। जब फॉर्मूला दिया गया है कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जताम कई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनम, हरिकीर्तन करो, तो भगवान वही कहे कि हरिकीर्तन कराओ। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र भगवान चेतन महाप्रभु को ये तो पहले से था, पहले लोग उल्टा गाते थे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, लेकिन ये वैदिक मंत्र है। तो भगवान चेतन महाप्रभु सोचे कि तो ब्राह्मण ही वैदिक मंत्र का उच्चारण कर सकता है, फिर पापियों का उद्धार कैसे होगा? तो हम लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान चेतन उल्टा कर दिए। कभी कभी उल्टा चलने से भी अच्छा चीज होता है। आप तैरना जानते हो? नहीं जानते हो? आप नदी में भ्रमर देखे हो? आए? यदि भ्रमर में फंस जाओगे, आप सीखना तैरना तो जरूर पूछना तैराकी से। स्विमिंग पूल में सीखना मत तैरना, नदी में सीखना। तो ये हमारा दिव्यनिताई प्रभु है, कहा है? थोड़ा खड़ा हो जाओ, दिव्यनिताई किधर है? खड़ा खड़ा हो जाओ, सब लोग देख लेना। दिव्यनिताई हमारे कमांडर इन चीफ हैं कानपुर मंदिर के। ये अपने गांव हम लोगों को लेकर गए थे उत्तराखंड, यहां के राष्ट्रीय प्रभुधर है। इनका गांव बिल्कुल हिमालय में है, पृथ्वी से 1500 माइल ऊंचाई पर, ऐसे कुछ है फीट ऊंचाई पर। तो वहां एक राम गंगा, बहुत स्वच्छ जल है, बिल्कुल स्वच्छ, मतलब बिल्कुल स्वच्छ जल है, चेहरा देख सकते हो मिरर जैसा। लेकिन उसमें धारा का प्रवाह भी बहुत जोर से है। तो मेरा मन धुकधुका रहा था, मैं अच्छा तैरने वाला हूं लेकिन धुकधुका रहा था कि मैं कूदूं कि नहीं कूदूं। तो मैं सोचा कि पहले सब कौन कूदता है, कूदना तो था ही। तो निविधिता है प्रभु उसी गांव के हैं, तो वो और हमारा एक असिस्टेंट हेड पुजारी नवरू प्रभु, वो दोनों कूद गए। तो मैं भी कूद जाता हूं, चलो कूदते हैं। कूदकर हम लोग तो पार हो गए तीनों आदमी। एक हमारे भक्त हैं विनीत गोयंका, वो स्विमिंग पूल में तैरना जानते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये लोग कूदकर पार हो गए, मैं भी कूद जाता हूं। वो कूद गए और लगे डूबने। जब धारा आया तो नीचे से वो स्विमिंग पूल जैसे नीचे जाते हैं ना, तो कूद गए नीचे और धारा बहा करके ले जा रहा है। अब बाहर में ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मैं दिव्यता से यही बात कर रहा था कि हम लोगों को इतना प्रवाह धारा में है, कम से कम धोती में एक पत्थर बांध कर रखना चाहिए किसी को, जो डूब रहा है उसको निकालने के लिए। यही कारण था उसे डूबना शुरू किए। बाद में एक और भक्त था, जब उसको हम लोग निकाल दिए, दिव्यता प्रभु यही कूद करके गए, मैं मेरा शरीर भारी था तो हिम्मत नहीं कर रहा था, मैं भी जा सकता था लेकिन नहीं गया, ये हमसे पहले जंप कर गए, उसको निकाल दिए। तो एक और लड़का था कपिल, वो कम तैरना जानता है, वो कूद पड़ा, वो पार हो गया। तो हम लोगों ने पूछा, कपिल तू क्यों कूदा, जानता नहीं तैरना उतना अच्छा तरह से। कहा कि हमने देखा कि भक्तों में विश्वास कैसे करना चाहिए, जब आप लोग उसको बचा लिए तो मैं डूबता तो उसको अपन बचाते, इसलिए विश्वास, इसलिए मैं कूद पड़ा। क्या जीवनता, ये बात सही है ना, मैं मनाकर नहीं बोल रहा हूं ना, कपिल ही बात बोला। एनीवे चलो, किसका प्रश्न था, हाथ उठाया, हाँ वो बता रहा हूं, कभी कभी उल्टा करने से क्या होता है, तो तैरने में एक वो भ्रमरी होता है, तो कहीं भ्रमरी में फंस जाओ तो जितना शक्ति है लाकर उल्टा घूमो, जब उल्टा घूम जाओगे तो भ्रमर टूट जाएगा। भ्रमर में पानी में फोर्स होता है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा फोर्स लगा तो भ्रमर को तोड़ दोगे, मैं कई एक बार किया हूं, तोड़ दोगे तब तो निकल जाओगे, नहीं तो पानी जो आपको दबाकर नीचे ले जाएगा। तो वैसे ही ये हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये भ्रमर के समान था। केवल ब्राह्मण लोग उसमें, दूसरे गया तो गया नीचे, केवल ब्राह्मण लोग थे। चेतन महाप्रभु सर लगाए, शक्ति उल्टा कर दिए, तोड़ दिए, सब लोग नहाओ उसी में, चिंता मत करो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो चेतन महाप्रभु की कृपा है कि हम लोग भी आज नहा रहे हैं होली नेम में, नहीं तो भ्रमण में अंदर चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, और कोई प्रश्न, ऑल राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।